एग्रो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, इसका मतलब क्या होता है?
इसका अर्थ ये है कि यदि आप खेतों में देखें, आपने खान पान में देखें, चाहे आप किस्में देखें कि अलग अलग तरह की किस्में हैं, जैसे कि पंजाब में नीली रावी वाटर बफलो है और केरला में वेचूर काओ है, तो इस तरह की जो विविधता स्थानीय स्तर पर हमारे देश में भारत में है प्राकृतिक रूप से, और क्योंकि पारंपरिक ज्ञान और जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके प्रयास से जो सिलेक्शंस हुए हैं और लोकल वैरायटीज़ अडैप्ट होते हैं, तो उससे ये विविधता बढ़ती है। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से प्राकृतिक रूप में विविधता है।
इसके आयाम क्या हैं? अगर हम भारत को लें या दक्षिण एशिया को लें, तो किस तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है?
हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें, तो भारत में वो माना जाता है कि वो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उसमें जो जैव संसाधन हैं उसमें विविधता पहले से ही रही है, और ये एक सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है, जिसमें जिस तरह से उड़ीसा राज्य में जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे इट्स कंसिडर्ड अ सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर राइस, तो आज भी वहाँ पे पारंपरिक किस्में जो किसान खुद जिन्होंने उसे डिवेलप किया है और अडेप्ट किया है, कई तरह की किस्में हैं जहाँ से बाकी जो विश्व भर में जहाँ से यहाँ से गई हैं ये ऐसे जो किस्में हैं, मछली में, गाय भैंस में, और जो पदार्थ हम जैव संसाधन इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए या दवा के लिए, उन सब में इतनी विविधता है। और अब देखें हर एक प्रांत में उसकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के हिसाब से वहाँ पे हर तरह के प्राकृतिक रूप अलग अलग होते हैं। जैसे बासमती आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल बासमती कहलाता है वो एक एग्रोइकोलॉजिकल जोन है हिमालयाज में, जो जिसे ऑथेंटिक बासमती कहा जाता है। तो हर एक स्थान की जो वायु जल परिस्थिति है उसके हिसाब में जो पनपता है और जो पारंपरिक ज्ञान से वहाँ पे उपजा है वही इस तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत होती है कि बाहर के देशों से लोग यहाँ से एक सैंपल ले जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील देश अपने लाइफ स्टॉक को और समृद्ध बनाने के लिए, लाइफ स्टॉक सेक्टर को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ से ओंगोले कैटल ब्रीड जो है उसका एक सैंपल जेनेटिक मटीरियल लेके गए हैं ताकि वो उसे क्रॉस ब्रीड करके और अपने कैटल वैराइटीज़ को और शक्तिशाली बना सकें या उसमें उससे और उपज ले सकें या प्रोडक्शन ले सकें मिल्क और मीट के लिए।
तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी को जलवायु परिवर्तन या मानव के क्रियाकलापों की वजह से किसी प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है?
बहुत ज़्यादा, जहाँ तापमान बढ़ता है या फिर तापमान कम होता है या जहाँ पे तूफान आंधी आती हैं तो उसका असर तो सीधा सीधा पड़ता ही है, और उससे मानव को जो जैव संसाधन को मिलने में जो दिक्कतें आती हैं, लॉस ऑफ सीड्स और लॉस ऑफ ब्रीड्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या जेनेटिक इरोजन जिसे कहा जाता है कि कई किस्में लुप्त हो जाती हैं क्योंकि अब उनकी प्राकृतिक घर जो है वो उजड़ जाता है एक तरह से। जलवायु परिवर्तन की वजह से तो चुनौतियां हैं ही, पर जैव विविधता एक तरह से एक इंश्योरेंस भी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना, उसको बचा के रखना अपने ही खान पान के लिए ही एक इंश्योरेंस है, एक तरह से बीमा है। वी हैव अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। अगर आपके पास एक बीज है जो किसी तूफान या किसी वर्षा के से लुप्त हो गया है या ख़राब हो गया है, आपके पास दो तीन और किस्में हैं जो इस परिवर्तन को सह सकती हैं, उनमें ऐसी क्षमता है या शक्ति है कि वो फ्लड वाटर्स में भी या ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, तो अंडर सबमर्जेंस भी फिर भी वो दे विल बेयर फ्रूट एंड यू विल बी एबल टू गेट योर फूड ग्रेन्स। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप कि क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है पर क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए और उससे डील करने के लिए एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से इंश्योरेंस है।
तो एग्रो बायोडायवर्सिटी लुप्त ना हो और फलती फूलती रहे, इससे इसके लिए एफएओ क्या प्रयास कर रहा है, किस तरह के कदम उठा रहा है, पॉलिसी लेवल पे हो या ग्राउंड लेवल पे हो?
देखिए, दो पहलू हैं इसका। एक तो पॉलिसी फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और जो हमारे रोज़मर्रा के जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फार्म एंड फूड के लिए, उसमें एग्रो बायोडायवर्सिटी का एलिमेंट इट शुड बी वायर्ड इनटू दैट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कुछ बो रहे हैं तो केवल एक किस्म ना बोएं, पर उसमें विविधता हो, तो एक लिविंग डाइवर्सिटी हो ऑन द फील्ड, जिससे रेजिलियंस बढ़ती है। दूसरा है कि पॉलिसी लेवल पे ऐसे कौन से कानून हैं या नीतियां हैं जो जैव विविधता के विपरीत जाते हैं, उनमें उचित बदलाव लाना, और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, उनको एकत्रित करके उन्हें हाईलाइट करना। इस तरह का कार्य एफएओ ने अपने टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम में भी किया है, जो मेन स्ट्रीमिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 3 states में, केरला, पंजाब और मिजोरम में, हमने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, जो जैव विविधता बोर्ड बने हैं, जो राष्ट्रीय कानून जैव विविधता कानून के अंतर्गत बने हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उन्हें और समृद्ध करना, और उनकी बात डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जैसे फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी, उन तक ये बात पहुंचाना कि उनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में किस लिए और किस तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी को जोड़ा जा सकता है, उसका एक अभिन्न भाग उसे बनाया जा सकता है, ताकि वो फूले और पनपे।
तो पहले से अब तक किस तरह के बदलाव आए हैं और भविष्य में क्या कुछ किया जाना बाकी है?
सबसे पहले तो जागरूकता बहुत आई है, क्योंकि एक तो राष्ट्रीय कानून भी है, और केंद्रीय सरकार भारत में उन्होंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी बनाए हैं, 2020 तक उसका टाइमलाइन था, पर उसके तहत और उससे ये बात चर्चित हुई है कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैसे आप हमें पूछ रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं वो श्रोता भी जानना चाहेंगे कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी है और क्यों आवश्यक है, ये बात पहले शुरू करना और इस बात को आगे ज़मीन तक लेके जाना, ये इसमें काफ़ी बदलाव आया है और अच्छा काम भी हुआ है, काफ़ी स्टेट एजेंसीज़ भी जुड़ी हैं इस बात से, और किस तरह से हमने करिकुलम भी बनाया है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी करिकुलम, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ICR के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, जिन लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो स्थानीय स्तर पे बनी हैं, ग्राम पंचायत से जुड़ी हैं, उनमें इन बातों को चर्चित करना और उन्हें सक्षम बनाना कि वो किस तरह से अपने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बना सकते हैं, जिसमें सीड्स और ब्रीड्स का पूरा लेखा जोखा रहता है, ताकि ये पारंपरिक ज्ञान भी हम ना भूल जाएं और ना लुप्त हो जाए। तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं।
अभी जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे जो वर्कशॉप हुई है, जो कार्यशाला आयोजित हुई थी, उसमें किन प्रमुख मुद्दों पे चर्चा हुई?
एफएओ इंडिया ने ये कार्यशाला इसलिए रखी क्योंकि 2 साल का हमारा एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम था, मेन स्ट्रीमिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी, वो समाप्त हुआ, और इट वेंट ऑन सक्सेसफुली दैट इन दीज 2 years, इन 2 सालों में हमने किस तरह से एक आउटरीच कर पाए हैं इस विषय पर, और किस तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी की बात हम आगे ले गए, ना केवल पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण डिपार्टमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स में हैं, उनसे चर्चा की और उन्हें इसका भाग बनाया, पर उनके द्वारा उनको जोड़ते हुए ये बात हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एनालाइज सेक्टर्स को भी लेके गए कि किस तरह से एक तालमेल होना चाहिए, कि अगर पर्यावरण की और संरक्षण की बात हो रही है जैव विविधता की, तो दूसरी ओर प्रोडक्टिविटी के नाम पे केवल एक ही मोनोकल्चर करना, वो एग्रो बायोडाइवर्सिटी के विपरीत जाता है। इसलिए किस तरह से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ऑन द ग्राउंड एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए उसे। दूसरा, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान प्रपोज किया है कि किस तरह से दोनों मंत्रालय केंद्रीय स्तर पे, पर्यावरण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, किस तरह से उनमें तालमेल हो सकती है, ताकि दोनों के दायरे में एग्रो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिले और जैव विविधता जो कृषि में हो वो बढ़े। और एक हमने एग्रो बायोडाइवर्सिटी करिकुलम स्टेट स्पेसिफिक, स्टेट की ही भाषा में, जैसे केरला में मलयालम, पंजाबी में गुरमुखी और मिजोरम में मिजो लैंग्वेज में, उन्हीं के भाषा में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार किए और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी आयोजित की गई, जिसमें कृषि डिपार्टमेंट से जुड़े जो आत्मा ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सटेंशन सर्विस देते हैं फार्मर्स को और फार्मर्स कम्युनिटीज को भी जोड़ते हुए, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो एक लीगल लोकल लेवल बॉडी है ग्राम पंचायत से जुड़ी, उन सबको जोड़ते हुए कि किस तरह से ये एकत्रित होके ही ये काम आगे ले जाया जा सकता है, ये अकेले का काम नहीं है, इसमें हम सबको जुड़ना है, इसलिए ये एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ एक TCP के द्वारा।
तो जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समाधान भी निकल कर आए।
उसमें सबसे ज़्यादा जोर था कि ना केवल एक्सीटू यानी कि आप जीन बैंक में एकत्रित करें जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं या उनके सीड सैंपल्स हैं या फिर ब्रीड्स का जेनेटिक मटेरियल है लाइक ब्लड एंड सीमन सैंपल्स, ये केवल एक्सीटू ज़रूरी नहीं है, पर इन सीटू ऑन फार्म लिविंग डाइवर्सिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए किसानों को सशक्त करना और जो फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड काम है, उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, और कंज्यूमर्स पे को भी ये अवेयरनेस लाना कि आप जागरूक रहें कि आप केवल धान और गेहूं ही ना खाएं, मिलेट्स भी हैं कई तरह के, और कई तरह के ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो हमारे डाइट में होने चाहिए, जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं। तो ये एक जागरूकता लाना, पर ये सब और ये एक एक उत्साह के साथ ये बात आगे हुई, और ये खुशी भी हुई कि अरे कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम खोए नहीं हैं, अभी तक हमारे पास वो हैं, इसलिए हमें किस तरह से उन्हें दोबारा अपने फूड चेन में या अपने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में दोबारा लाना चाहिए, या फेस्टिवल्स के थ्रू, बिकॉज देयर सो मेनी बायो कल्चरल प्रैक्टिसेस विच कीप आर फूड कल्चर्स अलाइव। तो इस तरह से कई बातें निकल के आईं जो कई बार नानी दादी के नुस्खों की तरह उन्हें नाअंदाज कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये पहचानना, उसकी अहमियत पहचानना, ये सबसे बड़ी बात उठ के आई है।